देखिए, हम जो समझते हैं महाराज जी पूर्ण थे, पूर्णता का असली मतलब क्या है वो हम नहीं समझते, इसलिए ऐसी बात करते हैं। पूर्णता का मतलब होता है ब्रह्मवित ब्रह्ममैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और ब्रह्म को क्या कहते हैं? अद्वैत पुरुषा, तो अद्वैत पुरुष है अर्थात केवल वही है, ना वहां संसार है, ना वहां माया है, ना वहां हमारी और आपकी रचना है। तो जिसको गुरु कहते हैं उसी को महाराज ने कहा है आत्मलीन। और आत्मलीनताई का मतलब होता है जो मैं एक इंडिविजुअल जीव हूं। आप सब यहां बैठे हैं, आप सबको जीव करके कहा जाता है, जीव करके देखा जाता है। और संसारियों के द्वारा आपको देह करके देखा जाता है, इसलिए आपके नाम हैं, आपके रूप हैं, आपके गुण हैं, आपके कर्म हैं, और इसी से हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। गुरु को भी हम पूर्ण कहने के पश्चात भी उसको हम नाम रूप के द्वारा ही पहचानते हैं, इसीलिए एक गुरु दूसरा गुरु तीसरा गुरु की बात करते हैं। जबकि महर्षि रमण साफ कह रहे हैं गुरु केवल एक है, वो आत्मा है या परमेश्वर है। हमारे जो गुरु के बारे में निर्णय होते हैं वो भेद बुद्धि के कारण होते हैं। गुरु को कोई वहम नहीं है, इसलिए उसको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। जो ब्रह्म ही हो गया उसको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। जो ब्रह्म हो गया उसका ना मन से कोई संबंध है, ना तन से कोई संबंध है, वो केवल चेतन सत्ता मात्र है। तो ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमको मिल जाए कोई संसार में, ये हम तो द्वैत रचना पर रह रहे हैं, हम तो जीव है ना, हम तो अपने आप को जीव करके ही जानते हैं, इंडिविजुअल करके ही जानते हैं। मेरे अंदर मैं भाव है, अहंकार है मेरे अंदर। तो इस अहंकार को खत्म करने के लिए गुरु आपको दिशा देता है। क्यों दिशा देता है? क्योंकि गुरु में अहंकार नहीं है, वो इंडिविजुअल नहीं है, एक व्यक्तिगत आदमी नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है उसका, व्यक्तित्व आत्मा में भस्म हो चुका है, वो सीधा परमेश्वर है, इसलिए उसको मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड कहा जाता है, ईश्वर का अवतरण कहा जाता है, जिसको गीता में कहा गया अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अपने स्वरूप का बयान कर रहे हैं, पहले कहते हैं अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं अजन्मा हूं, जन्म तो शरीर का होता है ना, मैं शरीर हूं ही नहीं। कहते हैं अजन्मा, जब अजन्मा है तो अविनाशी भी होगा, जो नाम रूप है वो परिवर्तन भी होगा उसमें, इसका नाम रूप नहीं है उसमें परिवर्तन कहां से होगा। इसलिए वो कहते हैं कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, और सारे प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, भूता नाम ईश्वर अपि सन, हम प्राणी हैं हमारी देह प्राण पर आधारित है, इसलिए हमको प्राणी कहा जाता है। तो सारे प्राणियों का मालिक होने पर भी वो ईश्वर क्या करता है, प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, मैं अपनी योग माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। तो इस प्रकट ईश्वर को ही हम सदगुरु कहते हैं, या अवतार कहते हैं, या ब्रह्म ऋषि कहते हैं, बहुत से नाम हम लोगों ने रख रखे हैं। फिलहाल गुरु को इस राम नाम से कोई वास्ता नहीं होता। तो इसीलिए जब वो गुरु नाम देता है किसी को, वो नाम हमको सुनाई पड़ता है, इसलिए हम उसको एक लैंग्वेज करके समझते हैं, भाषा करके समझते हैं। इसमें ये अक्षर है और इतना बड़ा है, और कोई अर्थ भी बन सकता है तो उसका अर्थ भी करते हैं, उसका अर्थ ये है। जबकि नाम के बारे में गुरु खुद ये कहता है, ये नाम खुद गुरु है, ये नाम खुद गुरु है। इसलिए महर्षि रमण ने इसको क्लियर किया कि गुरु आत्मा और मंत्र ये एक ही चीज है। इसका मतलब हुआ, जिस प्रकार गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं अवतार लेता हूं, तो वही प्रभु मेरे कल्याण के लिए नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो वो नाम हुआ या गुरु हुआ। गुरु नाम रूप गुण कर्म से न्यारा है, तो जो गुरु नाम देता है वो भी नाम रूप गुण कर्म से न्यारा है। हम कहीं उसको एक लिखने वाला मंत्र ना समझ लें, इसलिए वो हमको चेतावनी देता है और हिदायत देता है। वैदिक काल से ये परंपरा चली आई है, ऋषि पढ़ते शास्त्र पढ़ते देखो, वैदिक काल से ये परंपरा चली आई है, और महाजी की वाणी भी इसको कन्फर्म कर रही है। यदि किसी ने योग मार्ग में चलना है तो ब्रह्म ऋषि से उसको, जिसको पूर्ण गुरु कहते हैं, पूर्ण गुरु से उसको नाम लेना ही पड़ेगा, यदि उसने योग मार्ग का रास्ता अपनाना है। तो ये जो नाम है, ये नाम नहीं है, ये गुरु है, और इसने ही आपको आत्मा में लीन करना है, इसने आपको आत्मा में लीन करना है। इसलिए यदि गुरु के प्रति आपके में वो श्रद्धा ही नहीं है उस दर्जे की, और उसकी हिदायत को आपके ऊपर आप मनमानी करने लगो, तो फिर आप ना शिष्य हो ना आपका कोई गुरु। सीधी सी बात, गुरु शिष्य की रिलेशनशिप उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन कोई व्यक्ति इस नाम को एक साधारण अक्षर का कोई वस्तु समझने लगता है। इसलिए माँ जी हिदायत देते थे, मुंह से इसको कभी उच्चारण मत करना, मुंह से बोलने के लिए ही मना करते, तो मुंह से बोलने वाली चीज ही नहीं है ये, मौन होकर अंदर इसमें मर मिटने की चीज। तो इसीलिए उपनिषद हिदायत दे रहा है, नाम ब्रह्मेति उपास्ते, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए, इससे ज्यादा और क्या क्लियर होगा आपके लिए। हम उसको नाम समझ रहे हैं, इसलिए भारत में तो बहुत ही प्रचलित है, कहीं चले जाओ, गुरुद्वारे से लेके मंदिरों से लेके मस्जिदों तक कहीं चले जाओ, क्योंकि जो सूफी संत होते थे वो भी नाम देते थे, क्योंकि हर जगह नाम का फैशन चल रहा है, नाम का पता है, मैं एबीसीडी में पता किसी नाम क्या हो, लोग समझते हैं ये कोई टेक्निक है, टेक्निक हमने सीख ली किसी से तो हमारा काम हो गया। यदि टेक्निक होती तो विचार करके देखो, महात्मा मंगतराम जी जैसा ब्रह्म ऋषि, उसके शिष्य 1000 से भी कम होते, और जिसने 16 वर्ष संसार में भ्रमण किया, गांव गांव शहर शहर, उसके 1000 से भी कम शिष्य होते, और नाम देने वाली संगतों के शिष्य 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ मिल जाएंगे आप। तो वो नाम है, नाम का फैशन है। तो ये विचारधारा आपको संसार में कैसे मिलेगी? आपको संसार के लोग जानते हैं इसको? संसार के लोग नहीं जानते। या तो शास्त्रों का कोई असली ज्ञाता है जिसने गहराई से उनका अध्ययन किया है, या कोई ऐसे ब्रह्म ऋषि का सीधा शिष्य है कोई जिसको गुरु ही समझाता है। गुरु उस शिष्य का जीवन होता है, वो गुरु के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाला होता है, इसलिए गुरु गुरु की बात का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। तो ऐसे शिष्य को गुरु हिदायत देता है, इसको कभी मुंह से बोलना मत। तो योग मार्ग की जो साधना है, जिसको राजयोग भी बोलते हैं, जो प्राण अपान के साथ की जाती है, श्वास के अंदर जाने और बाहर निकलने, इस प्राण के साथ इस नाम को जोड़ा जाता है। क्योंकि वो छोटा सा होता है, इसलिए इसको बीज मंत्र कहते हैं। इसलिए वाणी में भी आता है, ग्रंथ कतेब विचार से कभू ना होवे योग, बिन सतगुरु के साधन करे उपजे व्याधि रोग। तो वाणी खोल लीजिए महाराज जी, अभी तो ब्रह्म ही जानता है कि क्या लीला है। आप यदि कहीं गलती करते हो, कहीं से नाम किसी से ले आते हो, किसी मनुष्य से, ऐसा ब्रह्म ऋषि आपको नहीं मिला, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जपते नहीं है, ले लेते हैं नाम, जपता कौन है? लेकिन किसी को लगन लगी जाए, नहीं, वो अपनी जिंदगी इसमें मिटा ही दे, तो उसके शरीर को रोग भी लग सकता है। दो व्यक्ति तो मैंने अपनी जिंदगी में खुद ही पागल होते हुए देखे हैं, दो एग्जाम्पल थे मेरे सामने। तो सत्पुरुष की बात, यही कहें सत्पुरुषों की बात, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं होती। उनकी बात को समझने के लिए या तो पूर्ण श्रद्धा चाहिए, इसलिए महाराज कहते हैं प्रेमी, या तो कोई मूर्ख आदमी इस मार्ग पर चल पाता। मूर्ख का मतलब, मूर्ख ना समझने जैसा हम मूर्ख समझते हैं, मूर्ख का मतलब है जो व्यक्ति तर्क में तर्क नहीं करता, गुरु ने जो बात कही उसने विश्वास कर लिया, ये बात पत्थर की लगी है, बस उसने पालन शुरू कर दिया। या कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो बारीकी से हर चीज का एनालिसिस करे, शास्त्र का स्वाध्याय करे और हर एंगल से उस चीज को समझ ले, निश्चिंत हो जाता है ना, अब समझ लिया गुरु कह क्या रहा है, क्यों कह रहा है, हर एंगल से वो बात को समझ लेता है। इसलिए सत्पुरुष के द्वारा शास्त्र की रचना होती है, वाणी प्रकट होती है, क्या काय के लिए, पढ़ने वालों के लिए तो होती है ना, ये समझने वालों के लिए तो होती है, लेकिन सभी तो नहीं पढ़ते उसको, ना सभी समझने की कोशिश करते। ज्यादातर लोग पढ़ते लिखते नहीं है, केवल मान लेते हैं, हाँ साहब हमें विश्वास है गुरु पर, गुरु ने कहा है, बात सत्य हो गई, खत्म हो गया। इसीलिए संसार में ऐसे लोगों को लोग मूर्ख बनाया करते हैं। ज्यादातर संसार में भोले प्राणी होते, भोली जनता होती, उनको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो इसलिए गुरु आजकल जो नकली हैं वो सिखा देते हैं, भाई देखो गुरु की बुराई कहीं मत सुनना, गुरु की बुराई सुनने से बड़ा कोई पाप नहीं है, गुरु जैसा करे उस पर कभी शक मत करना, और जो पूर्ण गुरु वो क्या कर रहा है, महाजी कह रहे हैं प्रेमी यदि परीक्षा लेनी पड़े, सिर पे अंगारे भी रखने पड़े, तो परीक्षा ले लो गुरु ये पूर्ण है या नहीं। तो इसीलिए संसार में भेड़ चाल चलती है, यहाँ इसलिए करोड़ों लोग अध्यात्म पर चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली या वास्तव में शायद पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोग भी अध्यात्म चलने वाले नहीं मिलेंगे आप। करोड़ों की तो बात ही छोड़ो, इनकी संख्या हजारों में भी नहीं है वास्तव में अध्यात्म चलने वाले। अब बताइए गुरु की किसको आवश्यकता है? ज्यादातर भेड़ चाल पर चलने वाले लोगों को गुरु की आवश्यकता होती है। जो वास्तव में जिज्ञासु है वो कोई कोई होता है, जिसके बारे में गीता में कहा गया है कि हजारों में से कोई एक इस मार्ग पर चलता है। लेकिन फिर भी जो प्रभु है, जो नारायण है, वो हम जीवों के लिए व्यवस्था करता है, क्योंकि हो सकता है हमारे वो भाग्य ना हो कि पूर्ण ब्रह्म ऋषि से हमारी सीधी भेंट हो जाए। जिज्ञासा मेरे अंदर भी ईश्वर भक्ति करने की, इसीलिए जब प्रभु धरती पर अवतार लेते हैं तो उनके द्वारा मंत्र भी प्रकट होते हैं, उनके द्वारा वाणी भी प्रकट होती है, उनके द्वारा शास्त्र भी प्रकट होते हैं, और उस अवतार का जीवन भी बड़ा खुला मिलता है समाज में देखने को। कुछ गुरुओं का तो बिल्कुल ही गुप्त जीवन होता है, शायद किसी के दो चार शिष्य होते हो, किसी का एक ही होता, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रह्म ऋषि होते हैं जिनका खुला जीवन होता है। इसके पीछे क्यों नहीं लगा सकते हैं? इस संसार का मालिक प्रभु है, वो जानता है जो जीव बंधन में है, जो दुखी हैं, इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो उनको रास्ता मिलना चाहिए। तो रास्ता उनका भी जाता तो पूर्ण गुरु से होकर ही है। लेकिन जो भी रास्ता पूर्ण गुरु के से होकर जाता है वो होता पूर्ण है। इसीलिए महाराज जी को ये वाणी प्रकट होने से पहले ये महामंत्र प्रकट हुआ। वाणी तो बाद में प्रकट हुई ना, महाराज जी के अंदर कोई कल्पना ही नहीं थी कि मैं किसी को दीक्षा दूं, मैं किसी को मंत्र दूं, मेरे द्वारा वाणी प्रकट हो। 13 वर्ष की आयु में तो आप विचार करो, महाराज जी के अंदर ये बात थी या जीवनी पढ़कर देखो आप, दूर दूर तक ये बात नहीं थी। रात उनकी उस वक्त जंगल में ही करती थी, तो उस समय उनकी समाधि लगा करती थी, वो आत्मीयता की स्थिति नहीं थी, उस समय वो ब्रह्म ऋषि नहीं थे। तो प्रभु ने ही उनके माध्यम से इस मंत्र रूप में 3 दिन में अवतार लिया। पहले दिन ओम ब्रह्म सत्यम, दूसरे दिन निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा, तीसरे दिन सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वर आय मन। महाराज ने केवल उसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया। उसके वर्षों बाद वाणी जब प्रकट होनी शुरू हुई और लिखी जाने लगी, तब भक्त बनारसी जी ने एक दिन महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी जब भी वाणी लिखने की बात होती है आप कहते हैं पहले महामंत्र लिखो, कोई काम करना होता है तो आप कहते हैं महामंत्र का 5 बार उच्चारण करो, कोई शुभ कार्य के पहले कोई शुभ आप जो है ये महामंत्र की पाठ की बात या लिखने की बात कहते हैं, इसका क्या महत्व है? लेकिन नेचुरल प्रश्न था भगत जी का। तो भगत जी महाराज जी के लिए सुबह को एक बाल्टी पानी नहाने के लिए लेने जाया करते थे, जहां भी वो खंडर में ठहरे थे, और चाय बना के लाते थे। जब वो काम से फारिग हुए वापस आए महाराज जी के पास, तब महाराज जी ने एक पर्चा उनके आगे रखा। बनारसी तो जो पूछ रहा था महामंदिर क्या महिमा है, वो ये पाए। तो गुरु के द्वारा चाहे कलम से लिखी हुई हो चाहे मुझसे उच्चारण की हो, ये गुरु के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना, तो मुंह भी इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है और हाथ भी इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता। गुरु के द्वारा वाणी प्रकट हो चाहे वो लिखे, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो इसीलिए पूरा ग्रंथ जब कंपाइल हुआ तो उसमें ये वाणी आई महामंत्र की महिमा की। इसका पहला ही दोहा है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धिदाता, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। आम व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो वहां भी यही अर्थ करेगा इसका। इसका मतलब मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, मैं यदि महामंत्र का जाप करूंगा तो मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि वाणी कह क्या रही है वो, सर्व सिद्धि दाता। सर्व सिद्धि का क्या मतलब होता है? अच्छा ये वाणी क्यों प्रकट हुई है, महामंत्र क्यों प्रकट हुआ है? मुझको जीव भाव से मुक्त करने के लिए प्रकट हुआ है, और तो कोई मतलब ही नहीं है। तेरा संसार अच्छी तरह से चले इसलिए सुना कि गुरु संसार में आया, तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाए इसलिए गुरु संसार में आया। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। उसका जगत से उद्धार करने के लिए आए हैं। जगत है कहां, आपके मन के अंदर कदम। इसका मतलब मन की सत्ता को ही गुरु खत्म करने आया है। तो इस मन की सत्ता को मैं तो खत्म कर ही नहीं सकता। कर्म कर करके सोच सोच के मैं मन को मोटा तो कर सकता हूं, इसके संस्कार और गहरे तो कर सकता हूं, खत्म नहीं कर सकता, मेरे सामर्थ्य में। तो इसीलिए मुझको कहा जाता है, तूने यदि संसारी दुख से मुक्त होना है, वो दुख अन्य कहीं नहीं है, तेरे मन के अंतर्गत उस दुख का स्रोत जो तू संसार में भोग रहा है तेरा मन है। इसलिए इस दुख से तुम्हें निवृत्ति प्राप्त करनी है तो तुझे अंतर्यामी ईश्वर का सिमरन करना पड़ेगा। तो वो अंतर्यामी ईश्वर तुझको दुख से मुक्त होने के लिए मंत्र रूप में प्रकट हुआ, ये उसका मंत्रावतार है। जैसे गुरु की देह प्रकट हुई तो हम देह को मनुष्य कहते हैं या ब्रह्म ऋषि कहते हैं, हम तो उसको ब्रह्म ऋषि कहते हैं ना, उसका आदर सत्कार साक्षात ब्रह्म हमारे सामने खड़ा है ऐसा मानकर ऐसा जानकर ही तो करते हैं। जितने भी हम जानते हैं कि गुरु की देह भी नाशवान है, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट साक्षात ईश्वर की तरह करते भी करते हैं। तो वो जो बात कह रहा है उस पर हम अपना दिमाग लगाकर उसके संसारिक अर्थ कैसे निकाल सकते हैं, हमको परमिशन ही नहीं है उसके अर्थ निकालने की। इसलिए ये वाणी प्रकट हुई ताकि कोई ये ना कहे मन से साहब, वो गुरु से जो मंत्र मिलता था उससे तो मोक्ष मिलता था, इस महामंत्र से मोक्ष ना मिलेगा। दुनिया तो यही कहेगी ना उससे, क्योंकि नकली गुरु तैयार करने दुनिया ने, दुनिया ने हजारों की तादाद में नकली गुरु तैयार करने हैं, नकली संगतें तैयार करनी है, नकली शिष्य तैयार करने हैं। और महाराज जी स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं, गुरु यदि नकली है तो शिष्य भी उसी गति को प्राप्त होगा जिस गति को गुरु प्राप्त हुआ, अर्थात वो भी डूबा और शिष्य भी डूबे। ये नहीं कह सकते मैं तो भोला था मुझे धोखा दे दिया मैं क्या करूं, तुझे मनुष्य बना दिया गया था, तुझको बुद्धि भी दी गई थी, तूने अपनी बुद्धि का विकास करना था, पढ़ाई लिखाई करनी थी, अच्छे लोगों से जिज्ञासा करनी थी, खोजबीन करनी थी, उसके बाद तू गुरु धारण करता, गुरु क्यों धारण कर रहा हूं, मुझे ये भी नहीं पता तो गुरु धारण क्यों कर रहा है। तो इसीलिए ये ईश्वर रचना हो गया, हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। तो पिता पुत्र की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इसीलिए वो पिता शरीर धारण करके गुरु रूप में प्रकट होता है, इसलिए उसकी देह को योग माया कहा जाता है। वाणी द्वारा वो ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए महाजी आपसे कहते थे कि सत विचार करो। सत विचार का मतलब होता है सत पर विचार। तो सत किसे कहते हैं, जो ईश्वर से सीधा प्रकट हुआ। जैसे महामंत्र प्रकट हो रहा है, वाणी प्रकट हो रही है, समता विलास प्रकट हो रहा है, वेद प्रकट हो रहे हैं, नानक वाणी प्रकट हो रही है, कबीर वाणी प्रकट हो रही है, इस पर आपने गहरा मनन करना है, इसको कहते हैं सतविचार। तो यदि आपके अंदर श्रद्धा पूरी है, क्योंकि पढ़ने से पहले श्रद्धा का होना लाजमी है, यदि श्रद्धा ही नहीं है आप पढ़ रहे हो तो क्या मनन करोगे आप, सवाल ही पता नहीं। जो सतविचार के महत्व को समझता है पहले, पढ़ता बाद में, वही उस पर जी जान से अपना वक्त खर्च करो, क्योंकि उसको पता है जितनी जल्दी मैं इसको समझ लूंगा, जितना ठीक ठीक समझ लूंगा, उतना ही मैं गलतियों से बच जाऊंगा और ईश्वर की तरफ अग्रसर हो जाऊंगा। इसलिए उसके पढ़ने में लापरवाही नहीं होती। तो ऐसे श्रद्धालु पर, ऐसे जिज्ञासु पर प्रभु भी कृपा करते हैं, उनकी मदद भी मिलती है। ये तो मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से भी यह बात कर सकता हूं। ना मुझे किसी ने समता विलास पढ़ाई, ना मुझे किसी ने समता पुराण ग्रंथ पढ़ाया। और पहली बार 1977 में मैं इसको खरीद के लाया था। 10 रुपये कीमत थी समता विलास की, 20 रुपये कीमत थी ग्रंथ की, समय और 1 घंटे का डिफेंस में लंच मिलता था। तो मैंने अपने ड्रायर में ये ग्रंथ रख रखे थे। तो पहली स्टडी मैंने 1 घंटा रोज लंच के टाइम में की उनकी, लेकिन मैं आज कहूँ मेरी समझ में आ गया था तो गलत बात होगी, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन ये मुझे पता है कि मेरे अंदर ईश्वर की तरफ चलने की जिज्ञासा पूरी थी, ये मुझे पता है। इसीलिए जैसे जैसे मैं इनकी आगे स्टडी करता रहा, धीरे धीरे वो चीजें समझ में आने लगी। और समझ में आने लगी इसलिए अध्यात्म मार्ग में चलने में जो कोशिश थी वो भी पूरी होने लगी। और आज आप खुद ही जानते हैं कि इस बारे में मैं कितना जानता हूँ कितना नहीं जानता। मैं ये क्लेम नहीं करता मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन साधारण रूप में जो कुछ भी इंसान को जानना चाहिए वो तो मैं जानता हूँ। तो ये वाणी बड़ा स्पष्ट बयान कर रही है कि त्रयोदश अक्षर मंत्रिये सर्व सिद्धि दाता। सर्व सिद्धि का मतलब होता है कि सब कुछ सिद्ध हो जाना। सब कुछ सिद्ध हो जाने का मतलब होता है मनुष्य की वासना की निवृत्ति हो जाना, उसके अंदर कुछ भी जानने की कुछ भी करने की इच्छा ही समाप्त हो गई, क्योंकि अब वो पूर्ण हो गई, वासना की निवृत्ति हो गई। यह है पूर्ण सिद्धि। इसके लिए वाणी क्या करिए, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। मंगल का मतलब होता है कल्याण, कल्याण का मतलब होता है मोक्ष। अपार कह रही है वाणी, केवल मोक्ष ही लिमिटलेस होता है। अपार का मतलब होता है सीमा रहित, तो सीमा रहित केवल ब्रह्म है। तो जो इसका प्रेम से स्मरण करेगा, उस महामंत्र का जो प्रेम से स्मरण करेगा, प्रेम का मतलब ही होता है भक्ति, प्रेम का मतलब ही होता है डिवोशन। और प्रेम हमेशा याद रखिए लाइव चीज से किया जाता है, गुरु लाइव चीज है, गुरु से प्रेम किया जाता है, ईश्वर लाइव चीज है, ईश्वर से प्रेम किया जाता है, मनुष्य भी लाइव चीज है, मनुष्य से प्रेम किया जाता है। कोई चश्मे से अगर मैं प्रेम करता हूं, चश्मे को लाइक डिसलाइक किया जाता है, प्रेम नहीं किया जाता चश्मे। जो सिमरे नित प्रेम से, जो इसका निरंतर प्रेम से सिमरन करता है, इसका मतलब ही सीधा सही है, जो मंत्र को साक्षात गुरु समझकर, मंत्र को साक्षात ब्रह्म समझकर, जो इसका मौन होकर अंदर सिमरन करता है, इसको मानसिक जाप कहते हैं। ये प्राणापान की साधना नहीं है, क्योंकि उसको तो योग मार कहते हैं, और उसके लिए पूर्ण ब्रह्म ऋषि का मिलना जरूरी है, लाजमी है। वहां वैदिक काल से आज तक तो कोई कंसेशन नहीं किया गया, वैदिक काल से लेकर, कितना पुराना काल है, वहां से लेकर आज तक इस बारे में कंसेशन नहीं किया गया। योग मार्ग के बारे में वही चीज चल रही है, जहां भी पढ़ोगे वही बात मिलेगी। उसके लिए विश्वास के साथ जाप करना है आपने, तो ब्रह्म ऋषि को आपको कहीं ना कहीं प्राप्त करना ही पड़ेगा। और यदि किसी के अंदर जिज्ञासा ही जागृत हो जाए, वो जंगल जंगल शहर शहर घूमता रहे ब्रह्म ऋषि की तलाश में, तो ऐसे जिज्ञासु के लिए ईश्वर कहीं चला नहीं गया, वो उसको कहीं ना कहीं मिलेगा भी जरूर, महाकृष्ण जी करेगा। लेकिन ऐसे लोग कितने होंगे, पूरे हिंदुस्तान में खोजे हुए 10-15 लोग होंगे ऐसे, जिनको वास्तव में ब्रह्म ऋषि की तलाश है, ऐसे आपको पूरे हिंदुस्तान में 10-15 लोग मिलेंगे, ज्यादा बहुत मिल गए। माँ जी खुद कहते हैं प्रेमी संसार से गुरु कभी गायब नहीं होता, तेरी काबिलियत होगी तब तुझे मिलेगा ना वो। तो यदि तलाश है किसी को वास्तव में, तो मौत के आगे सरेंडर नहीं करता, मौत का गांव खेलकर गुरु की तलाश करता है, ऐसे को मिल भी जाता है। लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं, तो इसीलिए ये वैदिक काल से ये परंपरा भी चले आई है मंत्र उपासना। इसलिए गीता में भी आया यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं स्वयं हूं। देखो और महाजी की वाणी तो आप आज के युग की समझ ही रहे हो, आपकी भाषा में प्रकट हुई है। तो जो इस मंत्र को साक्षात ब्रह्म समझकर, साक्षात ईश्वर समझकर, इसके साथ मन लगाता है, सुंदर में मौन हो जाता है ना, मौन जब हो गए तो आप जानते हो कि जो भी विचार चलेगा वो कहां चलेगा, मन के अंदर चलेगा। और मैं यानी जीव उस विचार का अनुभव करने वाला हूं, मुझे पता है मन में क्या चल रहा है। तो जब क्या है कि मैंने मन के विचार से हटकर मैंने मन को मंत्र रूपी विचार में लगाना, अर्थात मंत्र का रेपिटेशन मैंने मन में करना। तो उस समय फिर जब मैं मौन हो गया, तो जिस प्रकार मैं विचार का दृष्टा हूं, उसी प्रकार मैं यानी जीव ये मंत्र का दृष्टा बन जाता है। मंत्र को क्योंकि ब्रह्म है, तो मंत्र उपासना ऐसे ही समझो आप जैसे ब्रह्म ऋषि आपके सामने बैठा हो, तो आपकी सीधी ब्रह्म से मिलन भेंट हो रही है, से मिलन हो रहा है। तो उसी प्रकार ब्रह्म ऋषि की जब बात मानते हो आप, जिस मंत्र का उसने मोहर लगाई है, जिस मंत्र को जपने की उसने परमिशन दी है, उसको जब आप जाप करते हो, उसको ब्रह्म जान करो, ईश्वर का अवतार जान करो, तब आपको क्या स्थिति प्राप्त होती है, उसी के लिए महामंत्र की महिमा की वाणी कह रही है, कलह कलेश सब दूर होए। देखो क्या गारंटी दे रही है, कलह कलेश सब दूर होए। और ये कलह कलेश हम सब जानते हैं, अपने अनुभव से जानते हैं, ये मन के अंतर्गत उदय होते हैं कलह कलेश। प्रसन्नता भी मन के अंदर उदय होती है। मैं किसी सुंदर दृश्य को देख लूं, मन के अंदर आनंद पैदा होता है। मैं किसी दुश्मन को देख लूं, मेरे मन के अंदर क्लेश पैदा होता है। तो कलह क्लेश का स्रोत कहां है? मन है। तो कलह क्लेश सब दूर होए, इसका मतलब हो गया कि मन संकल्प रहित हो जाता है। कलह क्लेश का संकल्प उत्पन्न होता है ना, तो आध्यात्मिक भाषा में क्या कहोगे कि मन के अंदर संकल्प का उठना खत्म हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, वासना रहित हो जाता है। कलह क्लेश सब दूर होए तो मिलेगा क्या? पाए ज्ञान तत्व योग। ज्ञान तत्व जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उससे तेरा योग हो जाता है। मंगत तत् अक्षर मित गाइए प्रभु दर्शन होए संग। तो ये अक्षर जो हैं साधारण भाषा के अक्षर नहीं है, इसको अंग्रेज भी जप सकता है, अरबी फारसी पढ़ने वाला भी जप सकता है, चाइनीज भी जप सकता है, इसका उच्चारण कोई भी सीख सकता है। अल्फाबेट चेंज कर लो, हर लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है ना, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन तो किसी भी लैंग्वेज में किया सकता है। इसको आप तमिल में लिख लो, इसको आप गुरुमुखी में लिख लो, जिसमें चाह लिख लो, जब पढ़ोगे उसको तो वही आवाज निकलेगी जो महामंत्र आप हिंदी में पढ़ते हो तो निकलते। तो वहां कोई ईश्वर कोई भाषा से बंधा हुआ नहीं है, ईश्वर किसी संस्कृति से बंधा हुआ नहीं है, ईश्वर किसी देश से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए सत्पुरुष के द्वारा प्रकट हुई थी यूनिवर्सल होती है, पूरे विश्व के लिए है वो। लेकिन फायदा किसका होगा? फायदा उसी का होगा जिसकी उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी आप उसका प्रेम से जाप करोगे, आपने प्रेम पैदा नहीं होगा। उसने कहा है पता नहीं, ठीक कहा है गलत कहा, आप ये कहो, आप बार बार ये सोचोगे उसने कहा तो है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा विद्वान भी है, झूठ भी नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी आप कहोगे पता नहीं ठीक कह रहा है ये गलत कह रहा है। और वाणी का अर्थ करने की या वाणी को समझने की आपके अंदर इस समय अकल नहीं है तो क्या करोगे? आप डाउट में रह जाते, फिर आप और किसी को तलाश करते हो, ठीक है सारा संसार ऐसे चलता। तो किसी ने भी किसी का ठेका तो नहीं ले रखा। महाराज जी भी जिन शिष्यों को दिशा दे देते थे उनके भी ठेकेदार नहीं बनते थे। प्रेमी मार्गदर्शन तुम्हारा कर दिया गया, कृपा तुम्हारे ऊपर कर दी गई, अब आगे मेहनत तुमने ही करनी है। इनकी आज्ञा पालन करोगे तो कल्याण होगा, मनमानी करोगे तो रह जाओ। इतना जरूर होता है कि अगले जन्म में भी गुरु पकड़ता है, जो शिष्य बनाता है अगले जन्म में भी वो उसको पकड़ता है, उसका संघ छोड़ता नहीं गुरु। लेकिन वर्तमान जन्म हम क्यों बर्बाद करें, बुद्धिमान ही चाहिए। अरे अगले जन्म में पता ही नहीं है, अभी वर्तमान जन्म की तो पता है ना, इसको क्यों खराब करें। जब हमको पता है कि कलह क्लेश मनुष्य के मन के में अपनी ही वासना के कारण होते हैं, अपनी ही डिजायर के कारण होते हैं, अपने ही स्वभाव के कारण होते हैं। अब ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जब चला हूं, इसका मतलब यह स्वभाव से तुम्हें मुक्त होना है। तमोगुणी और रजोगुणी की तो बात ही छोड़ो, सतोगुणी स्वभाव से भी तुम्हें मुक्त होना है। अभी तो अपनी उन इच्छाओं पर हुआ, जो तेरी आदतें हैं, तो देख रहा है 20-20 साल से शिकार हूं, अभी भी उसका शिकार हो जाता हूं। जैसे किसी को बहुत क्रोध आता है तो अभी भी छोटी सी बात पे बड़ा क्रोध आता है। जितने डिग्री की बात है उतनी डिग्री का क्रोध आया तब भी आवाज समझ में आती है, लेकिन उसका कोई रेशियो नहीं होता। तो अपने स्वभाव का मैं शिकार आज भी हो जाता है। तो ये कितना गहरा बंधन है, और इस बंधन को काटने के लिए मैंने जीवन में पूर्ण गुरु पर विश्वास किया, तो अब मैंने पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने अपना दैनिक जीवन भी व्यतीत करना है। तो शारीरिक जीवन में व्यतीत कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो शारीरिक जीवन ही मेरा ये बाहर का जो दैनिक जीवन है, और एक मेरा मानसिक जीवन भी तो है, अंदर क्या सोचता रहता हूं। तो मानसिक जीवन तुमने ईश्वर भक्ति वाला व्यतीत कर रहा है, मन अंदर है, ईश्वर अंदर है, उसकी भक्ति अंदर ही होती है, जहां ईश्वर है वहीं मिलेगा, जहां मैं हूं उसी को मिलेगा, मैं अंदर ही हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं, जो मन का शिकार है, मन भी अंदर ही है। और इस शिकार से मुक्त करने के लिए जो ईश्वर मंत्र रूप में प्रकट हुआ है, जो ईश्वर गुरु रूप में प्रकट हुआ है, इस ईश्वर ने वाणी के रूप में ज्ञान प्रकट किया, वो ईश्वर भी इस देह के अंदर ही है। इसीलिए यदि मैं पूर्ण गुरु पर विश्वास करके इस मंत्र का मौन होकर जाप करता हूं, तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है कभी भी कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और दो बातें सीख लो, ये मंत्र मुझको मोक्ष प्रदान करेगा ही करेगा, इस जन्म में करे, अगले जन्म में करे, उससे अगले जन्म में करे, ये मेरे सोचने का काम नहीं है। इतना सोचने का काम है कि महाराज ने जो लिखकर दे दिया, कम से कम उस मिनिमम प्रोग्राम पे तो चलने वाला बनू मैं, उस मिनिमम को भी और मिनिमम कर लू मैं, तो मिनिमम क्या का हुआ फिर। तो महाराज ने शब्द आवाज में लिख के दे दिया कि कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा सायंकाल, 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक करना लाजमी है। मैं अपनी मुसीबत से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जन्म के रूप में आया हूं, मनुष्य जन्म लेकर आया, तो और दुनिया का कोई भी काम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। यदि मैं इंपॉर्टेंस देता हूं तो ये मेरी या तो गलतफहमी है या मेरी नालायकी है। यदि मैं गुरु के इस लिखित आज्ञा के पश्चात भी इससे समझौता करता हूं तो या तो मैं नादान हूं या मक्कार। मुझको अपने बारे में होश ही नहीं है, ना ईश्वर के बारे में होश है, ना इस देह विज्ञान के बारे में होश है। देह विज्ञान यही तो है, साइंस जो भी देह विज्ञान पढ़ाती हो, अध्यात्म विद्या तो ये कह रही है भाई इस देह से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इस ज्ञान इंद्रियों के कारण तो देह की कीमत है, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, क्योंकि मन की डिजायर पहले उठती है, उसकी पूर्ति के लिए इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हो, शेष भोग को भोगते हैं। तो मन में डिजायर होती है तो बेचैन कौन होता है? मुझको पता है, मैं होता है। जो डिजायर जब पूरी होती है, वो भोग वस्तु प्राप्त होती है, तो खुश कौन होता है? वो भी मैं होता हूं। तो जिस पर सुख का दुख का असर पड़ रहा है वो मैं हूं। लेकिन अध्यात्म विद्या ना सीखने के कारण सारी जिंदगी में मैं शरीर बनकर घूमता रहता हूं, जो तेरे पतन की अंतिम हालत है। देह बन के घूमना ये मनुष्य के पतन की अंतिम हालत, इससे नीचा पतन इसका क्या होगा? तब इसलिए एक दिन ये राक्षस बन जाता है। तो देहधारी है, इसका स्वास्थ्य कभी बिगड़ जाए, जैसी संग धारण करेगा, जैसी सोसाइटी मिलेगी, वैसे स्वभाव बन जाता है इसका। तो निकल करके सीखता है ना, इसलिए तूने यदि स्वभाव से मुक्त होना है तो डे एंड नाइट, अर्थात जब तक तू जागता है, तूने गुरु की बातों के बारे में ही विचार करना है। विचार करने की आदत नहीं है तो उसकी बातों को पढ़ने के द्वारा विचार करना सीखना है। और तू संसार को जो याद करता है ना सुख के लिए, तो उस विचार को, सत विचार को पढ़कर समझकर तुझको ये समझ आ जाती है यह संसार विकरूप है, इसलिए तेरा इसमें राग टूट जाता है, तेरे अंदर वैराग्य भाव पैदा होता है। और शास्त्र का निर्णय जब तू समझता है, उससे विवेक पैदा होता है। तो जब तेरे अंदर विवेक पैदा होता है, वैराग्य भाव पैदा होता है, उस हालत में जब तू सिमरन करता है, तब तुझको पता लगता है कि सिमरन तुझे क्या देता है। हम तो सिमरन का नियम पालन करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं। सिमरन का नियम पालन करते हैं, क्योंकि ना हमारे अंदर विवेक है ना वैराग्य। परिवार में गहरी आ सकती है, अपनी देह में गहरी आ सकती है, इसलिए जरा भी नुकसान हो जाए तड़प जाते हैं, सिमरन फट से छोड़ देते हैं। तो जब तक आपके अंदर अपने ही बारे में समझ नहीं आएगी, अपने बंधन के बारे में समझ नहीं आएगी, तब तक आप सिमरन को वो महत्व नहीं दोगे। और गुरु के मार्ग को, गुरु के मार्गदर्शन को आप समझने की कोशिश भी गहराई से नहीं करोगे। इसीलिए ये वाणी हम हजार बार पढ़ लेते हैं, हजार बार पाठ कर लेते हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते। लिखा तो सकते क्यों आप लिखा तो? अरे आपको लिखित गारंटी चाहिए ना गुरु की। वाणी से बड़ी गारंटी क्या होगी बताओ मुझे? वाणी से बड़ी गारंटी क्या होगी? कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान से योग, ज्ञान तत्व के साथ तेरा योग हो गया। मंगत तत् अक्षर नित गाइए, गाइए का मतलब सिमरन से। ये तत् अक्षर है, तत् कहते हैं ब्रह्म को, ये अक्षर नहीं है, ये ब्रह्म अक्षर है, अर्थात ब्रह्म रूप है। इसका तू जाप करेगा तो प्रभु दर्शन होगा तुझे, प्रभु से संयोग होगा तेरा। इसके बाद भी कोई संसारी जीव गारंटी चाहे किसी से, तो यही कहना पड़ेगा ये मूर्ख जीव है, और क्या कहा जाए। इससे सरल व्याख्या मंत्र की क्या हुआ? तो हम सब अपनी ही गलती का शिकार होते हैं, हम गुरु की बात नहीं सुन रहे। विचार करो जरा, हमारी बात कौन सुनेगा? हमारी क्या कीमत है? एक ब्रह्म ऋषि जिसका जीवन खुला किताब की तरह पेश हुआ संसार के लिए, उसकी ही संगत उसकी बात नहीं सुन रही है, तो हमारी बात कौन सुनेगा? संसार ऐसे ही चलता है। दुनिया में ऐसी कोई संगत जो पैदा हुई हो, बिगड़ी ना हो, खत्म ना हुई हो, ऐसी बची है कोई? कोई एग्जाम्पल है तो सामने? संसार में जो बनता है वो बिगड़ता है, संसार की रचना यही है, वो बनने बिगड़ने की जगह है। इसलिए मैंने संसार से ऊपर उठना, मैं भी अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, ये भी बनने बिगड़ने की चीज है। पैदा होता है देह, बन गई, देह मरती है तो देह बिगड़ गई। तो इस परिवर्तनशील देह के चक्कर में मैं पड़कर जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। इसलिए यदि वाणी कह रही है कि जिसने ईश्वर की भक्ति नहीं की, अर्थात ईश्वर भक्ति के लिए जिसने जीवन नहीं किया, उसके जीवन का उद्देश्य वो था ईश्वर भक्ति करना, और जिसने परिवार बसाने के लिए, परिवार को ठीक करने के लिए, अपना सांसारिक जीवन ठीक करने के लिए बड़े बड़े कर्म किए, और ठीक तरह कैसे किए, मैं ये कह रहा हूं गलत तरीके से, ठीक तरह कैसे किए, तो वाणी तो उसको यही कहती है, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन से हो, वो मैंने पशु जीवन ही व्यतीत किया, ये समझ मुझको होनी चाहिए। हम शायद समझते होंगे वो चोर मक्कार को पशु कहते होंगे, ना ना, जो पूरी तरह ईमानदारी से जीवन व्यतीत करे मनुष्य बनकर और ईश्वर भक्ति ना करे तो उसने पशु जीवन व्यतीत किया। क्योंकि जिस काम के लिए मनुष्य योनि मिली थी वो तो काम ही नहीं किया, तो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस तुम्हें इस आइटम को देनी थी, मुझको पता मैं हाईएस्ट इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूं, किसकी चिंता फिक्र मेरे मन में लगी रहती है, कहां मेरे प्राण पड़े रहते हैं मुझको पता है, इसलिए कौन बचा सकता है, जिस दिन बचाओगे आप खुद ही अपने आप को बचाओगे। इसीलिए इस विवेक के अनुसार जब आप सोचोगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संत अभिलाष का गहराई से अध्ययन करो, वाणी बड़ी है, संत अभिलाष समझ आई तो वाणी बड़ी आसानी से समझ में आई है, वाणी के वाणी का एक दोहा और संत अभिलाष के 10 पेज आपको एक जैसे नजर आएंगे, 10 पेज में जो लिखा है वो वाणी के एक ही दोहे में लिखा हुआ है, संत अभिलाष को गहरा मनन करना पड़ेगा तब आपको वाणी समझ में आएगी, सही समझना चाहते हैं। फिर भी बहुत सी बातें अनुभव की होती हैं, वो पढ़ने से समझ में नहीं आती है, कि महाराज ने खुद ही कह रखा है, नहीं जब स्थिति तेरी आगे एडवांस होगी तो खुद ही तेरी बुद्धि समझ आएगी। इसीलिए महामंत्र जो संसार में प्रकट हुआ है कुछ साधारण चीज नहीं है, ये लापरवाही से जपने की चीज नहीं है, महामंत्र को हमने खिलौना समझ रखा है, जैसे मान कहते प्रेमी गुरु को तो तुम्हें खिलौना समझ रखा है, तो गुरु को देह समझे उसने गुरु को खिलौना समझ लिया होता है, इसलिए ऋषियों की बात पर ध्यान दो, साधारण बातें नहीं होती हैं। जो महर्षि रमण कह रहे हैं गुरु मंत्र ईश्वर आत्मा एक ही है, तो ये गहराई से मनन करने की चीज है, ये केवल कोटेशन याद करने की नहीं है, 10 लोगों को सुना दिया गुरु मंत्र ईश्वर एक ही है, मेरी खुद ही बुद्धि ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दूसरा कहां से एक्सेप्ट कर लो। तो इसीलिए भूल कर भी सत्पुरुषों की बातों को हम ना भी पालन करें, लेकिन उनको उनका लापरवाही से विवेचन नहीं करना चाहिए, लोगों को उल्टी सी चीजें समझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बड़ा पाप लगता है, धोखा दे रहे हैं किसी, ये मर मिटने की चीज है। इसलिए जब तक आपके अंदर गुरु प्रायणता नहीं है, गुरु ज्ञान पर मर मिटने की इच्छा नहीं है आपके अंदर, तब तक सिमरन में सफलता कैसे मिलेगी आपको बताऊंगा। गुरु की बातों को गहराई से पढ़ने की कोशिश करें, चाहे वो साधवी की बात हो चाहे वो सेवा की बात हो, बातें साधारण सी होती है, दैनिक कर्म में आप अपनाते हो उनको, लेकिन उनके पीछे भी बड़े बड़े गहरे विचार छिपे होते हैं, बड़ी गहराई छिपी होती है जो हमारी बुद्धि नहीं पकड़ पाती, इसलिए यदि वो गहरी बुद्धि नहीं है तो साधारण रूप में तो कम से कम पालन करें, माए करें सेवा की बात तो निष्काम सेवा की बात करें, और हम सब देख लें सेवा करने में हमको अहंकार आता नहीं आता, कहीं ये आता मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं कितनी सेवा करता हूं, ये तो वो सेवा नहीं करता, ये तो घटिया आदमी है, क्या तुलना कर रहे हैं, ये विचार ही सिद्ध कर रहा है, आप खुद रुक तो देखो कि ये भी देह है मैं भी देह हूं, ये विचार पहले आपके अंदर बना हुआ है तब आप ये निर्णय कर रहे हो अपने बारे में, जैसे के बारे में। वो जब समता विलास को पढ़ोगे, गहरा विचार करोगे, तो ये हर वक्त आपको बातें अलर्ट रखेंगी, छोटी छोटी गलतियों से बचाएंगे आप, मानसिक क्लेश आपको मुक्त रखेंगे आप। और उसकी पहचान ये है कि आप वृद्ध परिस्थिति में भी शांत चित्त बने रहोगे, इसकी पहचान है, वृद्ध परिस्थिति में भी शांत चित्त बने रहोगे। और विचारहीन होकर घूमते हो तो इतनी सी बात भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी, क्रोध को बढ़ा देगी, और चढ़ बैठोगे आपके ऊपर, इतनी सी बात आपके मन के अनुकूल नहीं है, चढ़ बैठोगे। ये पहचान है कि आप विचारहीन है। तो इसलिए सेवादार भी विचारहीन हो सकता है, ये साधारण लोगों को बात समझ में नहीं आती, लेकिन विचारवान समझता है बात, सेवादार भी विचारहीन हो सकता है। तो बिना विचार के ये मार्ग आसानी से तय नहीं होता, लाखों में से कोई एक भक्त ऐसा पैदा हो जाए जो विचार करना भी नहीं जानता, जो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर पूरे जन्म के संसार इतने गहरे होते हैं कि वो हमसे काफी आगे होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, क्या हालत थी, बचपन से 11 साल की एज में समाधि लग जाती थी, एक बार मैदान से गुजर रहे थे, काली घटा छाई हुई थी, तो सफेद पक्षियों की डार तो हंस रही है, जो भी कही है, गुजर रही थी ऊपर से, वो सीन इतना आकर्षक होता है, जब काली घटा छाई हो, सफेद पक्षियों की जो है वो पंक्ति गुजर रही हो, इतना फैसिनेटिंग होता है कि उनकी नजर उस पर जमी, एकदम जो है बेहोश हो गए, गिर पड़े। तो आम व्यक्ति तो ये समझेगा बेहोश हो गए, गिर पड़े, इनको जब भी उठोगे होश आया होगा, लेकिन जो अध्यात्म जानकार हैं वो जानते हैं क्या हुआ है, ये बड़ी ऊंची स्थिति भी जाती है। 11 साल में उनकी ये दुनिया, तो उनको जब जीवनी पड़ेगी ऐसी करेगी, मंदिर में माता का पूजा करने जाते थे, वो देवी के भक्त थे, ऐसी बातें करते हैं, और ये नहीं पढ़ेंगे, वो खुद ही कह रहे हो, वो काली की बात कर रहे हैं, उसको काली कह रहे हैं, काली को अंदर होती है, गुरु को कौन समझ सकता है, साधारण बातों से गुरु कौन समझ माता, वो काली के उपासक जहां नाम रूप खत्म हो जाता है, तो अंदर वो हालत है जहां नाम रूप खत्म है, उस स्थिति के मालिक के अंदर उसको वो काली कहते हैं। इस काली का ही एक दूसरा नाम कुंडलिनी है, तो दुनिया तो ये समझती है, कोई बाहर मंदिर में पूजा करते हैं ये समझ, इसलिए गुरु को समझना ना आसान नहीं होता, लेकिन जिस गुरु पर हमारा विश्वास, मान लिया हमारे महाराज से भेंट नहीं हुई लेकिन उनकी संगत से भेंट हुई, उनके ग्रंथों से भेंट हुई हमारी, उनका पता लगा हमको, उनके मंत्र का पता लगा, यह हमारा सौभाग्य है, तो उनके जीवन को पढ़ के सुनकर हमारे अंदर यह विश्वास आया है ना कि माया जी अपूर्ण नहीं थे, पूर्ण थे, जब पूर्ण थे तो फिर उनकी हर बात पूर्ण है, उसको हम अपने मनमानी तरीके से क्यों उसको कहते रहते, जैसा वाणी कह रही है वैसा ही उसको क्यों नहीं मानते, इसीलिए उसको वैसा ही मानो और वैसा ही चलने की कोशिश करो, नहीं तो आपको कोई चालाक और मकारी कहेगा, जो भी कहेगा और क्या कहेगा, भक्त तो दूर दूर तक नहीं हो आप, चालाक और मकार हो, अपने आप ही नुकसान कर रहे हो, दूसरे ऐड करोगे आप, दूसरा चले ना चले मैंने ठीक चल रहा है, इसका मैंने ख्याल रखा। आपके ठीक चलने से मान के प्रेमी यदि अध्यात्म विद्या तेरे में प्रवेश करेगी, तेरे जीवन में उतरेगी, तब खुद ही लोगों का भी मार्गदर्शन तेरे द्वारा होने लगेगा, लोगों का भी कल्याण तेरे द्वारा होगा। तो उतरे तो वो तो दूसरे के सहाय की इतनी जल्दबाजी क्यों है? अपने जागरूक हैं, यदि कोई आपसे पूछे जरूर उसको ठीक बात पता है तो बताएं, नहीं पता है तो भाई मुझे पता तो है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, मुझे ठीक पता है नहीं पता, डाउट है मुझे खुद, तो मैं आपका क्या मार्गदर्शन करें, कह दें साहब। तो ये मंत्र बड़ी कीमती चीज है, उसी प्रकार कीमती जिस प्रकार गुरु कीमती है। ये मोक्ष प्रदाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाला है, इसलिए इसको उसी रूप में अपनाएं जैसा गुरु ने मार्गदर्शन किया। ओम।